पृष्ठ संख्या 74, बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बचपनावस्था में जब बालकों के सिर, धड़, भुजाओं एवं पैरों की पेशियों में पर्याप्त मजबूती एवं ताकत आ जाती है, तब वह अपने इन अंगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। उसके सभी अंगों में अच्छा समन्वय स्थापित हो जाता है, परिणामस्वरूप वह क्रियात्मक कौशलों को सीखना प्रारंभ कर देता है। दरअसल बालक बचपनावस्था में जिन क्रियात्मक कौशलों को सीखता है, उनका विकास बाल्यावस्था में ही जाकर पूर्ण होता है। बाल्यावस्था में बालक का क्रियात्मक कौशल अधिक विकसित, परिष्कृत एवं परिपक्व होता है। 2 वर्ष से 4 वर्ष के बालकों के हाथ पैरों की मांसपेशियों में पर्याप्त दृढ़ता, मजबूती, परिपक्वता एवं विकास होने से वह विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को करने लगता है, जैसे लिखना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, वस्त्र बदलना, घरेलू कार्यों को संपन्न करना आदि क्रियाएं हाथों की मांसपेशियों में विकास होने के कारण ही वह कर पाता है। इसी प्रकार दौड़ना, कूदना, उछलना, सीढ़ी चढ़ना व उतरना, साइकिल चलाना, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, रस्सी कूदना आदि क्रियात्मक कौशल वह पैरों एवं हाथों में अच्छा समन्वय होने के कारण करता है। 1 वर्ष का बालक स्वयं खाना खाने के प्रति रुचि प्रदर्शित करने लगता है। अब वह अपने दोनों हाथों से पानी अथवा दूध के गिलास को अपने मुंह तक ले जाता है तथा 2-4 घूंट दूध अथवा पानी पी लेता है। हालांकि वह इस प्रयास में गिलास को कभी नीचे भी गिरा देता है। इसी प्रकार वह स्वयं अपने हाथों से भोजन खाना चाहता है और पूरे हाथ में भोजन भरकर मुंह तक ले जाता है, मगर वह खाता कम और बिखेरता अधिक है। 3 वर्ष का बालक स्वयं सलीके से भोजन करना सीख जाता है। 1.5-2 वर्ष का बालक वस्त्र उतारना सीख जाता है, बशर्ते उसके वस्त्र आगे से खुले होने चाहिए तथा जिसमें जीप या प्रेस बटन होना चाहिए। 3 या 3.5 वर्ष का बालक शर्ट पैंट पहनना सीख जाता है। वह जूता पहनना भी सीख जाता है, परंतु उसका लेस बांधना नहीं सीख पाता है। 5 से 6 वर्ष का बालक सभी प्रकार के वस्त्रों को पहनना सीख जाता है। वह स्वयं कंघी करना, दांतों को ब्रश से साफ करना, नहाना आदि क्रियात्मक कौशल सीख जाता है। 6 वर्ष का बालक कैंची से कागज काटकर विभिन्न आकृतियां बनाना तथा उसमें रंग भरना सीख जाता है। इस प्रकार वह कागज का नाव, मेढक, कैमरा, पंखा, कूलर, मोर आदि बनाना सीख जाता है तथा उसमें मनपसंद रंग भरने लगता है। बाल्यावस्था में बालक अधिक निडर एवं साहसी होता है। उसे गिरने, चोट लगने, कट जाने, जल जाने आदि का भय नहीं रहता है। इस कारण वह अधिकाधिक क्रियात्मक कौशलों को सीखता है। इस अवस्था में बच्चे जिन क्रियात्मक कौशलों को सीखते हैं, वे उसके सुखद भविष्य के लिए आवश्यक होते हैं। ये कौशल उनके जीवन पर्यंत काम आते हैं। 6 वर्ष का बालक अंग्रेजी अथवा हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सुंदर ढंग से लिख पढ़ सकता है। वह छोटे छोटे वाक्यों, गणित के छोटे सवालों को हल करना भी सीख जाता है। 3 से 3.5 वर्ष का बालक ट्राई साइकिल चलाना सीख लेता है। 7 से 8 वर्ष का बालक साइकिल सड़क के किनारे किनारे चला सकता है तथा आसपास की दुकानों में छोटी मोटी वस्तुएं खरीद कर ला सकता है, जैसे आलू, प्याज, नमक, मिर्च आदि। 5 से 6 वर्ष का बालक रस्सी उछलना, नृत्य करना आदि कौशलों को सीख जाता है। स्केटिंग, तैरने आदि की क्रियाएं भी वह 6 से 7 वर्ष में अच्छी तरह से कर लेता है, बशर्ते उसे समय पर उचित प्रशिक्षण दिया जाए। 6 से 11 वर्ष की अवस्था में बालकों में विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक कौशलों का विकास हो जाता है, परंतु इसके लिए उसे पर्याप्त अवसर एवं प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। जिन कौशलों को बालक इस उम्र में नहीं सीख पाता, उसका विकास उसमें नहीं हो पाता है और आगे चलकर बालक इन कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करता है। साथ ही वह देरी से सीखता है, जैसे साइकिल चलाने, स्केटिंग करने, लिखने, चित्र बनाने, तैरने आदि। इन क्रियाओं को बालक 11 वर्ष की अवस्था तक बड़ी ही आसानी से सीख लेता है, परंतु इसके पश्चात सीखने में मुश्किलें आती हैं, क्योंकि बालक में भय अथवा डर व्याप्त हो जाता है। 6 से 11 वर्ष की अवस्था में बालक बालिकाओं को घरेलू कार्यों को करने की दक्षता भी सिखानी चाहिए, जैसे बिस्तर झाड़ना, बिस्तर समेटना, बागवानी करना, आटा गूंथना, सब्जी काटना, फर्नीचर साफ करना, बर्तन मांजना, डाइनिंग टेबल पर प्लेटें लगाना, मेज साफ करना, खाना परोसना, खाना बनाना आदि। इन क्रियाओं को करने से बालक में आत्मविश्वास एवं आत्ममहत्ता की भावना जागृत होती है, अतः बालक को अतिशय संपन्नता मिलती है। उसे सुख की अनुभूति होती है, जिससे बालक में अच्छे गुणों का विकास होता है। हार्ले ने अपने अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि जिन बालकों में क्रियात्मक कौशलों का अच्छा विकास होता है, वे घर, स्कूल तथा खेल के साथियों के साथ अच्छा समायोजन स्थापित कर लेते हैं। जिन बालकों का क्रियात्मक कौशलों का विकास कम होता है, उन्हें दूसरों के साथ समायोजन स्थापित करने में कठिनाई आती है। शारीरिक कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। शारीरिक कौशलों का विकास मांसपेशियों में परिपक्वता एवं समन्वय के कारण आता है। इसके अतिरिक्त अधिगम प्रशिक्षण, सीखने के पर्याप्त अवसर व सुविधाएं भी जिम्मेदार हैं। जब बालक एक निश्चित आयु में किसी एक कौशल को सीख लेता है, तभी वह अगली आयु में उस कौशल को और भी अच्छे व परिष्कृत तरीके से संपन्न करता है। हम बार बार कौशल की बात कर रहे हैं, तो आइए जानें कि कौशल क्या है। क्रॉनबेक ने कौशल को परिभाषित करते हुए लिखा है, कौशल को स्वचालित, तीव्र, शुद्ध एवं सपाट शब्दों में वर्णित किया जा सकता है। कौशल को एक अकेली पूर्ण क्रिया में सोचना गलत है। किसी भी कार्य का कौशलपूर्ण निष्पादन, यहाँ तक कि एक पत्र का लिखना भी सैकड़ों नाड़ी मांसपेशी के समन्वय की श्रृंखला है। कौशलपूर्ण गति एक अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसमें संकेतों में विभेदीकरण एवं त्रुटियों का निरंतर संशोधन सम्मिलित है। आई स्किल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन सच वर्ड्स एज ऑटोमेटिक, रैपिड, एक्यूरेट एंड स्मूथ। इट इज रॉन्ग हाउ एवर टू थिंक ऑफ अ स्किल एज सम सिंगल परफेक्टेड एक्शन। एनी स्किल्ड परफॉर्मेंस, इवन राइटिंग अ लेटर, इज अ सीरियस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ नर्व मसल कोऑर्डिनेशन। अ स्किल्ड मूवमेंट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिफरेंशिएशन ऑफ क्यूसेस एंड कॉन्शियल करेक्शन ऑफ एफर्ट्स। यदि बालक के विकास क्रम का अध्ययन किया जाए, तो पता चलता है कि बचपनावस्था में ही क्रियात्मक कौशलों की नींव पड़ जाती है, जिसका विकास बाल्यावस्था तथा इसके बाद भी होता रहता है। बालक के शारीरिक कौशलों को मुख्य रूपों में दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, हाथ के कौशल, हैंड स्किल्स। नंबर 2, पैर के कौशल, लेग स्किल्स। नंबर 1, हाथ के कौशल, हैंड स्किल्स। बालकों में हाथ के कौशलों का विकास जल्दी होता है, बशर्ते उन्हें सीखने हेतु पर्याप्त अवसर, प्रशिक्षण सुविधाएं दी जाए। हाथ कौशल विभिन्न प्रकार के होते हैं और पैर के कौशल से कहीं अधिक लाभप्रद एवं उपयोगी होते हैं। यदि बालक बचपन से ही हाथ के कौशल का विकास कर लेता है, तो वह जीवन भर सुखी जीवन बिताता है, क्योंकि इससे उसे रोजगार मिलने में आसानी रहती है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बालकों को छोटी उम्र से ही हाथ के विभिन्न कौशलों को सीखने में पूरी मदद करें, उन्हें पर्याप्त अवसर व सुविधाएं दें। हाथ के कौशल के अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्न क्रियाएं आती हैं। नंबर 1, स्वयं खाना, सेल्फ फीडिंग। स्वयं खाना खाने की क्रिया का प्रारंभ तो बचपनावस्था से ही हो जाती है, जब बालक 8 से 9 माह का होता है। इस अवस्था में वह अपने मुंह तक दूध की बोतल ले जाता है और उसे निकाल सकता है। 1 वर्ष का बालक अपने दोनों हाथों से दूध का गिलास, कप को अपने मुंह तक ले जाता है तथा पानी अथवा दूध भी पी सकता है। 15 माह का बालक चम्मच का प्रयोग करना शुरू कर देता है, परंतु तब वह चम्मच को ठीक प्रकार से न तो पकड़ सकता है और न ही वह भोजन को खा सकता है। वह चम्मच से भोजन को मुंह तक ले जाता है तथा अधिकांश भोजन को जमीन पर गिरा देता है। प्रारंभ में बालक भोजन को जमीन पर गिराकर फैला देता है और उसे चुन चुन कर अपने मुंह में डालता है और खाता है, मगर निरंतर प्रशिक्षण देने एवं अभ्यास कराने से वह जमीन पर पड़ी वस्तुओं के मुंह में नहीं ले जाता है। अब वह बर्तन में ही अपने भोजन को उठाकर खाने लगता है। 2 वर्ष का बालक चम्मच से भोजन को खाना सीख जाता है। 3 वर्ष का बालक छुरे से ब्रेड पर मक्खन या जैम लगा लेता है। अब वह थोड़ा थोड़ा कांटे का उपयोग भी करना सीख जाता है। 4 वर्ष का बालक कांटे छुरी की सहायता से भोजन करना भली भांति सीख जाता है। 6 वर्ष का बालक वयस्क की भांति भोजन करने लगता है तथा भोजन करते समय थोड़ा थोड़ा बातचीत भी कर लेता है। अब वह दूसरे लोगों को भी भोजन परोसना सीख जाता है। 2, कपड़े पहनना, सेल्फ ड्रेसिंग। बालकों में स्वयं कपड़े पहनने एवं उतारने की कौशल का विकास 1.5 से 3 वर्ष की आयु के बीच तीव्र गति से होता है। बच्चा अपने कपड़े उतारना सीखता है, फिर कपड़े पहनना। 1.5 वर्ष का बालक जूते, मोजे, टोपी, जैकेट आदि आसानी से उतार लेता है, परंतु पहनने की क्रिया बाद में सीखता है, क्योंकि पहनने की क्रिया में अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। 3 वर्ष का बालक स्टाइलिस्ट की नेकर को पहनने में उतार सकता है। 4 वर्ष का बालक अपने शर्ट पैंट स्वयं पहन सकता है, मगर बटन नहीं लगा सकता। 5 वर्ष का बालक सभी प्रकार के वस्त्रों को पहनना सीख लेता है, परंतु बटन लगाने, खोलने की प्रक्रिया, जूते में लेस बांधने की प्रक्रिया वह 6 वर्ष की अवस्था तक सीख जाता है। पृष्ठ संख्या 77। अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां वस्त्र पहनना एवं उतारना जल्दी सीखती हैं, जिसका मुख्य कारण होता है 1, लड़कियों की कलाई में लचीलापन अधिक होता है, फलतः उनमें मांसपेशियों में समन्वय जल्दी आ जाता है, तथा 2, लड़कियों के वस्त्र बनावट में सरल होते हैं। 3, नहाना एवं बाल संवारना, वेडिंग एंड कॉम्बिंग हेयर्स। बालकों में बाल संवारने की क्रिया का प्रारंभ वस्त्र पहनने की क्रिया के साथ ही हो जाती है। 1.5 वर्ष का बालक कंघी को लेकर अपने सिर पर फेरता है। 3 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा अपने बालों को संवार लेता है। 6 से 7 वर्ष का बालक बाल संवारने में निपुण हो जाता है। 10 वर्ष का बालक विभिन्न स्टाइल में बालों को संवारने सजाने लगता है। अब वह वयस्कों की भांति अपने बालों को संवारता है। नहाने की क्रिया बालकों में 1.5 वर्ष की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, मगर तब तक वह केवल पानी में डूबकर नहाना चाहता है। वह बाल्टी या टब में बैठ जाता है और छपछपाने की आवाज पैदा करके नहाता है। 2 वर्ष का बालक मग में पानी से अपनी पेट को नहीं धो सकता है। वह सिर पर पानी डालता है, मगर अधिकांश पानी नीचे गिर जाता है। 4, गेंद फेंकना एवं लपकना, थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। बालकों को गेंद फेंकना और लपकना बहुत ही अच्छा लगता है, अतः बालकों में इसका विकास जल्दी होता है। परंतु गेंद फेंकने एवं लपकने की क्रिया तभी संभव हो पाती है जब हाथ, पैरों और आंखों की पेशियों के साथ ही बालक की सभी पेशियों से अच्छा समन्वय हो। गेसल ने इस संदर्भ में लिखा है कि गेंद फेंकने के कौशल में उत्तम स्थिर और गतिशील संतुलन आवश्यक होता है। गेंद फेंकने एवं लपकने का सही समय, आंख व हाथ के अच्छे संतुलन, उंगलियों को सही समय से कार्य करने के अतिरिक्त बांह, धड़, सिर और पैरों की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए थ्रोइंग अ बॉल रिक्वायर्स अ फाइन सेंस ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंस, एक्यूरेट टाइम ऑफ डिलीवरी एंड सेलर्स, गुड आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन एंड एप्रोप्रिएट फनिंग एट द फिंगर्स एज वेल एज द आर्म्स, ट्रंक, हेड एंड लेग्स इन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, गसेल। 5, लिखना, राइटिंग। लिखने की क्रिया का प्रारंभ बालकों में तभी हो पाता है जब उनकी भुजाओं, हाथ की कलाइयों, अंगुलियों एवं हथेलियों की पेशियों में परिपक्वता एवं समन्वय आ जाती है। 2.5 से 3 वर्ष का बालक अपने हाथों में चौक या पेंसिल लेकर स्लेट या कॉपी पर उल्टी सीधी रेखाएं खींचता है। पहले बच्चा समानांतर रेखाएं खींचता है, फिर खड़ी रेखाओं को खींचता है। 3 वर्ष का बालक कुछ अज्ञात संकेत बना लेता है। 3.5 से 4 वर्ष का बालक अंग्रेजी एवं हिंदी के शब्दों को थोड़ा थोड़ा लिखना सीख जाता है, मगर उसकी लिखावट अस्पष्ट, आक्रमिक और आकार में बड़ी होती है। इस कारण वह अक्षरों को ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा लिखता है। 5 वर्ष का बालक शीघ्रता से अस्पष्ट अक्षरों को लिखना सीख जाता है तथा अक्षरों का आकार भी मध्यम हो जाता है। 6 वर्ष का बालक अंग्रेजी हिंदी के सभी अक्षरों को स्पष्ट रूप से लिखना सीख जाता है। उनके अक्षरों के आकार भी छोटे होते हैं। अब वह शब्दों एवं वाक्यों को देखकर लिख सकता है। 7 वर्ष के बालक की लिखावट काफ़ी अच्छी, साफ सुथरी एवं स्पष्ट होती है। 8 से 9 वर्ष का बालक अपने विभिन्न स्टाइल से लेखन कार्य करने लगता है। एमिस ने 3 से 10 वर्ष के बालकों को लिखने की क्रिया का अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि बच्चे प्रारंभ में कागज पर नीचे दाहिनी ओर लिखना आरंभ करते हैं। 2 से 3 वर्ष के बालक का बायां हाथ नीचे बाएं हाथ भाग पर रहता है, फिर क्रम से आगे की ओर बढ़ता है। 6 साल का बालक लिखते समय अपने बाएं हाथ को कागज के ऊपर बाईं ओर रखता है। 6 है कॉपी अथवा नकल करना, कॉपिंग। किसी चीज को देखकर उसकी रेख की आकृति बनाना बड़ा ही कठिन एवं दुसाध्य कार्य है। इसे बच्चा बड़ी मुश्किल से सीख पाता है क्योंकि इसमें सूक्ष्म पेशियों के साथ साथ वस्तुओं में संबंध प्रत्यक्षीकरण भी जरूरी है। इसके लिए न केवल भुजाओं, हाथों, कलाइयों व अंगुलियों की पेशियों व तंत्रिकाओं पर नियंत्रण आवश्यक है, बल्कि मस्तिष्क के सेरिबुलर हेमिस्फीयर को भी विकसित करना चाहिए। मस्तिष्क के उस भाग में समुचित विकास भी जरूरी है। स्टैनफोर्ड रीजनल कैबिनेट द्वारा प्रतिपादित बुद्धि लब्धि परीक्षण द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि 5 वर्ष का बालक वर्गाकार आकृति की कॉपी करना सीख जाता है, 10 वर्ष का बालक विभिन्न ज्यामितीय आकारों को बड़ी ही सुगमता से कर लेता है। जैसे जैसे बालक की शारीरिक एवं मानसिक आयु में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे इस कौशल का विकास होता जाता है। 7, आकारों का निर्माण, ब्लॉक बिल्डिंग। बालक 3 वर्ष की अवस्था में ब्लॉक से आकृतियों का निर्माण करना सीख जाता है। पहले वह छोटे छोटे ब्लॉकों से सामान्य आकृतियां बनाता है, उन्हें सीधी रेखा में सजाता है। बाद में वह जटिल से जटिल एवं खूबसूरत आकृतियां बनाना सीख जाता है। 8, मोती पिरोना, ट्रेडिंग बीड्स। मोती पिरोना भी एक प्रकार का हस्तकौशल है जिसमें अंगुलियों की सूक्ष्म पेशियों के साथ ही आँख की पेशियों में परिपक्वता एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। 2.5 से 3 वर्ष के बालकों में मोती पिरोने का कौशल विकसित हो जाता है, परंतु जब बालक धागे में मोती पिरोता कम है और गिराता अधिक है। 3.5 वर्ष का बालक धागे में बिना गिराए मोती पिरो लेता है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है, वह शीघ्रता से धागे में मोती पिरोता जाता है। 79, कैंची से काटना, कटिंग बाय स्केयर्स। काटने की क्रिया मोती पिरोने से कहीं अधिक जटिल एवं कठिन कार्य है। कैंची से कागज काटने में उंगलियों की सूक्ष्म पेशियों का उपयोग होता है। अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि 3 से 4 वर्ष का बालक कागज को केवल सीधा सीधा काट सकता है, लेकिन वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार अथवा अन्य आकृति में काटने का कौशल 5 वर्ष के बाद ही आता है। हाथ का कौशल मात्र एक नज़र में। स्वयं खाना, कपड़े पहनना, गेंद फेंकना एवं लपकना, कॉपी अथवा नकल करना, मोती पिरोना, कैंची से काटना, ब्लॉक्स बनाना, लिखना, नहाना एवं बाल संवारना। पैरों के स्किल्स, लेग स्किल्स। पैरों के कौशल का विकास हाथ के कौशल के विकास के बाद ही प्रारंभ होता है। 1.5 वर्ष की अवस्था में बालकों में पैरों के कौशल का विकास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तब तक बालक अच्छी तरह से चलना सीख जाता है। 2 वर्ष का बालक आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी प्रकार से चल सकता है। वह केवल एक पैर से खड़ा हो सकता है, परंतु तब उसे सहारे की जरूरत होती है। 3 वर्ष का बालक बिना सहारे के एक पैर पर खड़ा हो सकता है। 4 वर्ष का बालक 12 इंच की ऊंचाई से कूद सकता है। 5 से 6 वर्ष का बालक रस्सी के इस पार से उस पार कूद सकता है और जमीन पर चौक द्वारा बनाई गई लाइन पर चलते हुए अपना संतुलन बना लेता है। ईबी हरलॉक ने संदर्भ में भी लिखा है, बिफोर बेबीज 2 ईयर्स ओल्ड दे कैन वॉक साइडवेज एंड बैकवर्ड्स, दे कैन स्टैंड ऑन फुट विद हेल्प एंड अ ईयर लेटर विदाउट हेल्प, बिफोर दियर सेकेंड बर्थडेज बेबीज कैन वॉक ऑन टिप टॉप एंड बिटवीन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ ईयर दे कैन वॉक वेल एनफ टू बैलेंस ऑन अ नैरो प्लैंक एलिवेंट ऑन वन एंड आर टू फॉलो अ चाक मार्क ऑन द फ्लोर। पृष्ठ संख्या 80। पैरों के कौशल के अंतर्गत दौड़ना, कूदना, उछलना, छलांग लगाना, चौकड़ी भरना, सीढ़ी चढ़ना, तैरना, ट्राईसाइकिल करना, साइकिल चलाना इत्यादि क्रियाएं आती हैं। नंबर एक, दौड़ना, रनिंग। जब बालक अच्छी तरह से चलना सीख जाता है तभी उसमें दौड़ने के कौशल का विकास होता है। प्रारंभ में दौड़ते समय बालक बार बार गिरता है क्योंकि उसका शरीर तेज कदमों के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। 3 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा दौड़ने लगता है, उसे दौड़ने में प्रसन्नता, सुख एवं आनंद की अनुभूति होती है। इस कारण वह बिना मतलब ही इधर उधर दौड़ता रहता है, वह गिरता रहता है। कभी कभी गिरने पर उसे घुटनों, कुहनी, सिर में भी चोट लग जाती है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास से वह दौड़ना सीख जाता है। 5 वर्ष का बालक अच्छी तरह से दौड़ सकता है तथा दौड़ वाले खेलों में भाग भी ले सकता है, क्योंकि तब तक उसके पैरों की मांसपेशियां इतना विकसित हो गई होती हैं कि उसे गिरने की संभावना नगण्य हो जाती है। अब वह दौड़ने दौड़ते मुड़ भी सकता है। दौड़ने की क्रिया बालकों के शारीरिक रचना, गठन एवं स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। मोटे बच्चे देर से दौड़ना सीखते हैं क्योंकि उनका शारीरिक वजन अधिक होने के कारण तेज दौड़ने के साथ स्थापित संतुलन नहीं कर पाते हैं, फलतः वे गिर जाते हैं। दुबले पतले बच्चे तेजी से दौड़ना सीख जाते हैं। नंबर 2, कूदना, उछलना, छलांग लगाना तथा चौकड़ी भरना, जंपिंग, स्पिकिंग, हॉपिंग एंड ग्लोपिंग। कूदना, उछलना, छलांग लगाना तथा चौकड़ी भरना, ये सभी क्रियाएं दौड़ने के ही विविध रूप हैं। सामान्यतः 2 वर्ष का बालक कुछ कठिनाई के साथ असंतुलित रूप से छोटी छोटी दूरियों पर कूदने का प्रयास करता है, परंतु वह इस प्रयास में नीचे गिर जाता है। 4 वर्ष का बालक ऊपर से नीचे कूद जाता है। 5 वर्ष का बालक अच्छी तरह से कूदना सीख जाता है। उछलने एवं छलांग लगाने की क्रिया, स्किपिंग एंड हॉपिंग, इसका कौशल कूदने का ही परिवर्तित एवं परिष्कृत रूप है। 3 वर्ष के बालक में उछलने या छलांग लगाने के कौशल का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। 3 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा उछल सकता है, अब वह थोड़ा थोड़ा छलांग लगाना भी सीख जाता है। 4 वर्ष का बालक उछलते उछलते मुड़ सकता है, यदि रास्ते में कोई बाधा हो तो उसे भी उछल कर पार कर सकता है। प्रारंभ में बालक अपने दोनों टांगों से उछलने छलांग लगाने का प्रयास करता है। 8 वर्ष का बालक मेंढक की तरह छलांग लगा सकता है। 9 वर्ष का बालक पीछे की तरफ उछल सकता है। बाई 8 ईयर्स चिल्ड्रेन आर एबल टू होप लाइक अ फ्रॉग एंड होप ऑन बोथ फीट एंड इन एन अदर ईयर दे इवन लर्न टू होप बैकवर्ड्स। परंतु अभ्यास एवं प्रशिक्षण से बालक जल्दी ही उछलने कूदने में दक्षता हासिल कर लेता है। 5 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा रस्सी कूदना सीख जाता है, अब वह आगे तथा पीछे की ओर उछलते उछलते मुड़ सकता है। धीरे धीरे रस्सी कूदने की क्रिया में गति आती है। अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि केवल शहरी लड़कियां ही 5 वर्ष की अवस्था तक रस्सी कूदना सीख पाती हैं, ग्रामीण लड़कियों में यह अवसर नहीं मिलता है। पृष्ठ संख्या 81। चौकड़ी भरना, ग्लोपिंग अर्थात घोड़े की तरह वेग से सरपट भागना भी कूदने का ही परिवर्तित एवं विकसित रूप है, जिसे बालक 6 वर्ष की अवस्था में सीखता है। प्रारंभ में वह तेज गति से नहीं भाग सकता क्योंकि तब तक उसका शरीर भार तेज कदमों के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है। 8 वर्ष का बालक चौकड़ी भरते भरते किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। नंबर 3, सीढ़ी चढ़ना, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। रेंग कर चलने की क्रिया के साथ ही बालक में सीढ़ी चढ़ने के कौशल का विकास हो जाता है। जब बच्चा रेंगकर चलता है तभी वह अपने हाथों एवं घुटनों की सहायता से चढ़ना भी सीख जाता है, परंतु सीढ़ी उतरने की क्रिया वह बाद में सीखता है। 1.5 से 2 वर्ष का बालक सीढ़ी चढ़ना एवं उतरना दोनों ही क्रियाएं थोड़ा थोड़ा सीख जाता है, मगर अच्छी तरह से सीढ़ी चढ़ना एवं उतरना वह 3 से 3.5 वर्ष की अवस्था में ही कर पाता है। 4 वर्ष का बालक वयस्क की तरह सीढ़ी चढ़ने उतरने लगता है। प्रारंभ में सीढ़ी उतरते समय बालक का मुंह सीढ़ी की तरफ रहता है और फिर वह एक पैर नीचे वाली सीढ़ी पर डरते डरते रखता है, तब तक दूसरा पैर रखता है। गटरिज के अनुसार 6 वर्ष का बालक अच्छी तरह से सीढ़ियाँ चढ़ने एवं उतरने लगता है। अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि लड़के लड़कियों की तुलना में सीढ़ियाँ चढ़ना एवं उतरना जल्दी सीखते हैं। बाल्यावस्था में पेड़ों पर चढ़ना, दीवारों पर चढ़ना भी बालक बालिकाओं का शौक है। लड़के पेड़ पर चढ़ने में लड़कियों से आगे रहते हैं। ग्रामीण बच्चे पेड़ों पर चढ़ना जल्दी सीखते हैं। इसका प्रमुख कारण पर्याप्त अवसर एवं सुविधाएं हैं। बार बार के अभ्यास से बालक पेड़ों पर चढ़ना एवं उतरना सीख जाते हैं। 4, तैरना। 3 से 4 वर्ष का बालक तैरने का कौशल सीख सकता है, परंतु इसके लिए समुचित प्रशिक्षण, निर्देशन, प्रोत्साहन एवं अभ्यास कराने की आवश्यकता होती है। 5 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा तैरना सीख जाता है। 8 वर्ष का बालक तैरने की कला में दक्षता हासिल कर लेता है और प्रतियोगिता में भाग लेकर स्थान प्राप्त कर सकता है। 5, 3 पहिए एवं 2 पहिए वाली साइकिल चलाना, ट्राईसाइकिलिंग एंड बाईसाइकिलिंग। कुछ तीव्र बुद्धि के बच्चे 2.5 वर्ष की अवस्था से ही 3 पहिए वाली साइकिल चलाना सीख जाते हैं। 3 से 4 वर्ष के अधिकांश बच्चे ट्राई साइकिलिंग अच्छी तरीके से चलाना सीख जाते हैं। ट्राई साइकिलिंग चलाने में बालकों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है, अतः वे ट्राई साइकिलिंग को न केवल सामने की ओर बल्कि आगे पीछे, दाएं बाएं, इधर उधर किसी भी दिशा में घुमाकर चला लेते हैं। वे ट्राई साइकिलिंग चलाते चलाते ही किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। 5 वर्ष का बालक खूब अच्छी तरह ट्राई साइकिलिंग चलाना सीख जाता है। 6 वर्ष का बालक साइकिल चलाना सीख जाता है, परंतु उसे नित्य अभ्यास करानी पड़ती है, तब साइकिल सिखानी पड़ती है। 8 से 9 वर्ष का बालक सड़क के किनारे किनारे तेज गति से साइकिल चला सकता है। 8 वर्ष का बालक दूसरे बालक को बैठाकर भी तेज गति से साइकिल चला लेता है। 10 वर्ष का बालक तीव्र गति से साइकिल चलाकर निकल सकता है। पृष्ठ संख्या 82। साइकिल हो या ट्राई साइकिल, इसे चलाने के लिए अभ्यास, प्रोत्साहन, निर्देशन, प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सुविधा दिया जाना जरूरी है। जिन बालकों को बाल्यावस्था में साइकिल चलाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, वे बाद में साइकिल चलाने से भी डरते हैं। 6, नृत्य करना, डांसिंग। नृत्य करना भी एक प्रकार का कला एवं कौशल है। इसका विकास भी तभी संभव है जब पैरों की पेशियों में परिपक्वता एवं समन्वय होता है। इसके साथ ही निरंतर अभ्यास एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। 3 वर्ष के बालकों में नृत्य करने की क्षमता का विकास हो जाता है। यदि सरल स्टेप्स वाले नृत्य को 3 से 4 वर्ष के बालकों को सिखाया जाए तो इसे जल्दी सीख लेते हैं। अधिकांश बच्चे टीवी में नृत्य देखकर अपने अंगों को नृत्य की मुद्रा में हिलाने डुलाने लगते हैं। नृत्य की प्रारंभिक अवस्था में बालकों के पैरों का ठीक प्रकार से संतुलन नहीं हो पाता, परंतु निरंतर अभ्यास एवं प्रशिक्षण से उनके पैरों में संतुलन आने लगता है। 6 से 7 वर्ष का बालक अच्छी तरह से नृत्य कर लेता है। 12 से 13 वर्ष का बालक अथवा बालिका नृत्य करने में महारत हासिल कर सकता है। नृत्य कौशल का पूर्ण विकास किशोरावस्था से ही हो पाता है। क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। बालकों में क्रियात्मक विकास का प्रारंभ तभी से हो जाता है जब वह माता के गर्भ में पल रहा होता है, परंतु यह भी सत्य है कि सभी बालकों में क्रियात्मक विकास समान गति से एक ही निश्चित आयु में नहीं होता है। कुछ बालकों में क्रियात्मक विकास तीव्रता से होता है तो कुछ में मंदगति से। कुछ बालकों में क्रियात्मक विकास ही कुंठित हो जाता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। तो आइए जानें कि आखिरवार वह कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं जो क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं? बालकों के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य हैं। नंबर एक, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शोधों से ज्ञात हुआ है कि जिन बालकों का शारीरिक विकास उत्तम रहता है, उनका क्रियात्मक विकास भी अच्छा होता है, क्योंकि क्रियात्मक विकास का पेशियों एवं तंत्रिकाओं की परिपक्वता से सीधा एवं प्रत्यक्ष संबद्ध रहता है। जब तक बालकों के शरीर के विभिन्न अंगों में परिपक्वता नहीं आती है, उनका समुचित विकास नहीं होता है, तब तक वे किसी भी प्रकार की क्रियात्मक क्रियाएं नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि वे अपनी करवट तक नहीं बदल सकते हैं। दुर्बल शारीरिक अवस्था वाले बालक करवट बदलना, बैठना, उठना, चलना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना आदि कार्यों को तेजी से करना सीखते हैं। नंबर दो, शारीरिक रचना एवं गठन, बॉडी बिल्ड एंड स्ट्रक्चर। क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है शरीर रचना एवं गठन। जिन बालकों की शारीरिक रचना एवं गठन मेसोमॉर्फिक प्रकार का होता है, उनकी पेशियां लंबी, सुविकसित, दृढ़ एवं मजबूत होती है। वे एंडोमॉर्फिक रचना वाले बालकों की तुलना में जल्दी चलना सीख जाते हैं, क्योंकि एंडोमॉर्फिक रचना वाले बालकों की हड्डियां भारी होती है, वे मोटे एवं थुलथुले होते हैं। इस कारण वे जल्दी चलना एवं बैठना नहीं सीख पाते हैं। उनकी पैरों में, टांगों की पेशियों में इतनी ताकत नहीं होती है कि वे सिर, धड़ एवं कमर के भार को सह सकें। यही कारण है कि छोटे एवं दुर्बल बालक मोटे बालकों की अपेक्षा तेज गति से दौड़ सकते हैं और खेल कूद में आगे रहते हैं। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है, क्रियात्मक विकास में उसकी शरीर रचना का उतना ही अधिक महत्व नहीं रहता है, क्योंकि तब बालक प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं निरंतर अभ्यास से हाथ पैरों के कौशल में विकास कर लेता है। पृष्ठ संख्या 83। नंबर तीन, बुद्धि, इंटेलिजेंस। क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है बुद्धि, इंटेलिजेंस। इसका प्रभाव बचपनावस्था एवं बाल्यावस्था में अधिक पड़ता है, बाद की अवस्थाओं में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। शर्ली एवं जोन्स ने अपने अध्ययन में यह पाया कि बाल्यकाल में बुद्धि एवं क्रियात्मक विकास का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। तीव्र बुद्धि में केवल बालक क्रियात्मक कौशलों को यहाँ जल्दी सीखते हैं, वहीं दुर्बल बुद्धि के बालक देरी से। मालपास का भी ऐसा ही मानना है कि जो बच्चे देर से उठने, बैठने, चलने, दौड़ने, कूदने की क्रिया करते हैं, वे बुद्धि में भी दुर्बल होते हैं। परंतु कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि जो बच्चे दुर्बल बुद्धि के नहीं होते हैं, वे भी देर से बैठना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना आदि क्रियाएं सीखते हैं। सी ग्रीन ने अपने शोधों से यह सिद्ध किया है कि किशोरावस्था में क्रियात्मक कौशल का बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता है। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि का स्तर अधिक होता है, परंतु यदि उन्हें समुचित अवसर, प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन नहीं दिए जाएं, तो अभ्यास नहीं कराया जाए, तो महत्वपूर्ण कौशलों को वे जीवन पर्यंत तक नहीं सीख पाते हैं। जैसे तैरना, साइकिल चलाना, लिखना, पेंटिंग करना, रस्सी उछलना, कूदना आदि। नंबर चार, आहार, न्यूट्रिशन। पौष्टिक एवं संतुलित भोजन से बालकों को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं जो उनकी वृद्धि एवं बढ़वार के लिए जरूरी होते हैं। अतः पौष्टिक आहार भी बालक के क्रियात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जिन बालकों को सभी तत्वों से परिपूरित आहार नहीं मिलता, वे कुपोषित रह जाते हैं। कुपोषित बालकों के शरीर की पेशियां एवं हड्डियां पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण के अभाव में सुविकसित नहीं हो पाती हैं। अतः पेशियों में ताकत एवं बल नहीं आ पाता है। इसके कारण बालक उठने, बैठने, खड़े होने, चलने आदि क्रियात्मक कौशलों को काफी देर से सीखता है। नंबर पांच, कसे वस्त्र। कसे वस्त्र बालक के क्रियात्मक विकास में बाधा पहुंचाते हैं। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक शिशु के वजन एवं लंबाई में वृद्धि तीव्र गति से होती है। जन्म के समय जिस बालक का वजन 3 किलोग्राम होता है, वही बालक 1 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते करते 9 किलोग्राम का हो जाता है। उसकी लंबाई में भी 5 से 6 इंच की वृद्धि होती है। अतः जन्म के समय का बालक वस्त्र के प्रथम जन्मदिन के समय तक छोटा पड़ जाता है। वस्त्र भी शरीर को कसकर चिपक जाते हैं। कसे वस्त्रों से न केवल अंगों के विकास में रुकावट आती है, बल्कि अंगों की गतियों में संचालन में भी बाधा उत्पन्न होती है। H.M. हालवर्सन 1932 ने अपने अध्ययन में यह पाया कि नंगे बदन रहने वाले 6 माह के बालकों में वस्तुओं के पकड़ने की योग्यता का विकास शीघ्रता से हुआ। वनस्पति उनकी जो जन्म से ही वस्त्र पहन रहे थे। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बालकों को आरामदायक ढीले ढाले सूती वस्त्रों को पहनाएं। प्रश्न संख्या 84। नंबर 6, भय, फियर। क्रियात्मक कौशलों के विकास में भय का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कदापि नहीं नकारा जा सकता है। जिन बच्चों में गिरने, चोट लगने, कट जाने आदि का भय रहता है, वे तैरने, पेड़ पर चढ़ने, साइकिल चलाने, रस्सी कूदने जैसे क्रियात्मक कौशलों को आसानी से नहीं सीख पाते हैं। डर के कारण बालक विभिन्न कौशलों को सीखने से वंचित रह जाते हैं। परंतु जिन बालकों में डर नाम की चीज नहीं है, वे दौड़ने, भागने, उछलने कूदने, तैरने, साइकिल चलाने, पेड़ पर चढ़ने जैसे क्रियात्मक विकास को सरलता से सीख लेते हैं। इसी प्रकार यदि बच्चों को किसी कार्य करने पर बार बार डांटा फटकारा जाए या ताना मारा जाए, तो उनसे कार्यों में भय उत्पन्न हो जाता है। नंबर 7, बीमारी, टिसीज। बालकों की बीमारी भी क्रियात्मक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। जो बच्चे लंबे समय तक बीमार रहते हैं अथवा अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, उनमें क्रियात्मक विकास देर से होता है, क्योंकि बीमारी की अवधि में बालक को ना तो सीखने का अवसर मिलता है और ना ही उसे सीखने हेतु अभ्यास ही कराया जाता है। अतः बीमार बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में क्रियात्मक कौशलों के प्रदर्शन में पीछे रह जाते हैं। यदि बालक के हाथ पैरों के क्षेत्र में गंभीर चोटें लग जाती हैं, तो हाथ पैरों के कौशल का सही समय पर विकास नहीं हो पाता है। अतः माता पिता को चाहिए कि अपने बालकों को स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दे। नंबर 8, प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट। क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कारक है प्रोत्साहन। यदि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम है, सीखने के प्रयास अवसर भी उपलब्ध हैं, बुद्धि लब्धि IQ भी ठीक है, परंतु यदि सीखने हेतु प्रोत्साहित नहीं किया जाए, तो बालक के क्रियात्मक कौशल का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता है। तब बालक एक दूसरे बालक को तैरते, साइकिल चलाते, स्केटिंग करते, बैडमिंटन खेलते देखता है, तो वह भी उसे सीखने के लिए लालायित रहता है। यही उचित समय है कि बालकों को क्रियात्मक कौशलों को सिखाने का। इस समय बालक क्रियात्मक कौशलों को जल्दी ही सीख लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर इच्छा शक्ति जागृत होती है। इसके विपरीत जिन बच्चों को बात बात पर डांटा फटकारा जाता है, प्रोत्साहन अथवा प्रेरणा के 2 मीठे बोल तक नहीं बोले जाते, वहां बालक क्रियात्मक कौशलों को सीखने से वंचित रह जाते हैं। माता पिता, अभिभावक, संरक्षक तथा शिक्षक जब बालकों के कार्यों की प्रशंसा करते हैं, तो उनके कार्यों के प्रति रुचि जागृत होती है। अतः उनमें विभिन्न कौशलों को सीखने के प्रति उत्साह बना रहता है। बालकों को प्रोत्साहन मौखिक रूप से अथवा प्रलोभन देकर दिया जा सकता है। प्रोत्साहन के रूप में यदि बालकों को कुछ खाने पीने की चीज़ें जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम अथवा अन्य मनपसंद वस्तुएं दी जाती है, तो वे उत्साहित हो जाते हैं तथा जल्दी ही क्रियात्मक कौशलों को सीख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 85। नंबर 9, सीखने के अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। सीखने के उत्तम अवसर उपलब्ध कराकर बालकों में क्रियात्मक कौशलों का विकास किया जाता है। शारीरिक रूप से कमजोर बालकों को भी सीखने के उपयुक्त अवसर पाकर विभिन्न कौशलों को शीघ्रता से सीख जाते हैं। जिन बालकों को सीखने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं मिलते, वे विशिष्ट कौशलों को आजीवन सीख नहीं पाते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, ड्राइविंग करना, तैरना आदि। इन कौशलों का विकास बाल्यावस्था से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। अधिक उम्र के बालक कौशलों को सीखने से शर्म महसूस करते हैं। जिन बच्चों के माता पिता बालकों को जोखिम भरे कार्यों को करने से मना करते हैं, उछल कूद करने से रोकते हैं, ऐसे बच्चे जीवन में जोखिम पूर्ण कार्य करने से डरते हैं। नंबर 10, मांसपेशीय नियंत्रण के विकास के अवसर का अभाव। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि क्रियात्मक कौशलों का विकास तभी होता है जब बालक के विभिन्न अंगों में परिपक्वता आती है और उनमें अच्छा समन्वय होता है। धनाढ्य परिवार में माता पिता अधिकांश समय अपने बच्चों को गोदी में चिपकाए रखते हैं, उन्हें जमीन पर उतरने नहीं देते हैं। ऐसी अवस्था में बालक को करवट बदलने, खिसकने, घिसकने, रेंगने आदि का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी पेशियों में उचित समन्वय नहीं हो पाता है। इस कारण इन बालकों में बैठने, उठने, खड़े होने, रेंगने आदि क्रियाओं का विकास काफ़ी विलंब से होता है। अतः माता पिता को चाहिए कि वे बालक को कम से कम गोद में रखें और उसे जमीन पर ही खेलने, कूदने, दौड़ने, छुपने, उछलने, छलांग लगाने आदि का पर्याप्त अवसर दें, ताकि बालकों में क्रियात्मक कौशल का अच्छी तरह से विकास हो सके। नंबर 11, निपुणता की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन ऑफ परफेक्शन। कई माता पिता बालक से बहुत अपेक्षा रखते हैं और चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ों की तरह पढ़े लिखे, काम करे, खेले आदि। जैसे जब बच्चा चलने के लायक नहीं होता तो उसे चलने को कहा जाता है, जब दौड़ने के लायक नहीं होता तो दौड़ने को कहा जाता है, जब पढ़ने के लायक नहीं होता तो पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। परंतु उनकी इतनी अधिक अपेक्षा बालक के क्रियात्मक विकास में बाधा पहुंचाती है और उसे कुंठित कर देती है। अधिक अपेक्षा रखने वाले माता पिता बालकों को ना तो प्रोत्साहित करते हैं और ना ही उनकी प्रशंसा ही, वे बात बात पर उन्हें टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं, उनके बालक में निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में बालक विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को करने से घबराते हैं। नंबर 12, संवेगात्मक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस। भय, क्रोध, ईर्ष्या, दुख जैसे नकारात्मक संवेगों से बालक का क्रियात्मक विकास प्रभावित होता है। संवेगात्मक तनाव की स्थिति में बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, क्योंकि उनके मानस पटल पर निराशा का बादल छाया रहता है। अतः चाहकर भी बच्चा अच्छा कार्य नहीं कर पाता है। नंबर 13, अभ्यास और निर्देशन, प्रैक्टिस एंड गाइडेंस। निरंतर अभ्यास एवं निर्देशन से बालकों में क्रियात्मक कौशल का विकास होता है। रहीम कवि की ये पंक्तियाँ यहाँ चरितार्थ होते नजर आती हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात बार बार अभ्यास से मंद बुद्धि का बालक भी बुद्धिमान हो जाता है। ईबी हरलॉक ने अपने शब्दों में कहा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बट द क्वालिटी ऑफ द प्रैक्टिस इज फार मोर इम्पोर्टेंस देन द क्वांटिटी। अतः माता पिता परिवार के सदस्य एवं शिक्षक को चाहिए कि बालकों के क्रियात्मक विकास में कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिक्स अपनाए जाएं जिससे बालक जल्दी से सीख सके। अच्छे शिक्षक, माता पिता, संरक्षक, प्रशिक्षक विभिन्न कौशलों को और अपनी विशेषताओं को गूढ़ता पर ध्यान देते हैं। ईबी हरलॉक ने इस संदर्भ में भी लिखा है, मोर प्रैक्टिसेस नॉट एनफ, व्हाट इज वांटेड इज नीड प्रैक्टिस विच मीन्स प्रैक्टिस विच अंडरस्टैंडिंग। पृष्ठ संख्या 86, व्यक्तित्व संबंधी शील गुण, पर्सनालिटी ट्रेट्स। प्रत्येक बालक का अपना अलग अलग व्यक्तित्व होता है जो उसे वंशानुक्रम एवं वातावरण द्वारा प्राप्त होता है। जैसे वे बच्चे जो लज्जायु, अंतर्मुखी, कायर एवं डरपोक होते हैं, यदि उन्हें सीखने के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं, तो वे उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। फलतः बच्चे क्रियात्मक कौशलों को सीखने से वंचित रह जाते हैं। शर्मीले बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलने कूदने में शर्माते हैं, वे आसानी से दूसरे बालकों के साथ घुल मिल कर नहीं रह पाते हैं। इसके विपरीत वे बच्चे जो बहुर्मुखी स्वभाव के होते हैं, साहसी, निडर, आत्मनिर्भर, तेज तर्रार एवं आत्मविश्वासी होते हैं, जो विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को जल्दी ही सीख लेते हैं, वे कौशलों को सीखने में तनिक भी घबराते नहीं हैं। क्रियात्मक कौशलों को प्रभावित करने वाला कारक मात्र एक नज़र में शारीरिक विकास, बुद्धि, कसे वस्त्र, बीमारी अथवा रोग, सीखने के अवसर, निपुणता की अपेक्षा, अभ्यास और निर्देशन, शारीरिक रचना एवं गठन, आहार, भय, प्रोत्साहन, मांसपेशीय नियंत्रण के विकास के अवसर का अभाव, संवेगात्मक तनाव, व्यक्तित्व संबंधी शील गुण। पृष्ठ संख्या 87। क्रियात्मक कौशलों के विकास में खेल, प्रशिक्षण, अभ्यास, आलोचना एवं निर्देशन का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, क्रिटिसिज्म एंड गाइडेंस। नंबर एक, खेल का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले। क्रियात्मक कौशलों के विकास में खेल का अपूर्व योगदान है। खेल खेल में बालक अनेक महत्वपूर्ण एवं विलक्षण कौशलों को सीख लेता है। इसलिए नर्सरी स्कूल के बच्चों को पढ़ना लिखना, नृत्य करना आदि खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। बच्चा खेलते समय स्वतंत्र महसूस करता है, उसे खेलने में मजा आता है। प्रारंभ में बच्चा स्वप्रेमी होता है, वह अपने खिलौनों से स्वयं ही अकेले खेलता रहता है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, वह समूह प्रेमी बन जाता है और अब वह अपने खिलौनों को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करता है, जिससे बालक में सामाजिकता की भावना का विकास होता है। 3 वर्ष का बालक दूसरे बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। नंबर दो, प्रशिक्षण का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। क्रियात्मक कौशलों के विकास में प्रशिक्षण के महत्व को कदापि नकारा नहीं जा सकता है। यदि बालक को सही उम्र में सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो वह विभिन्न कौशलों को सुगमता से जल्दी से सीख लेते हैं। यदि बालक को किसी क्रिया करने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाए और बच्चा स्वयं ही अभ्यास करे तो कई त्रुटियां होने की संभावना बनी रहती है, साथ ही सीखने में अधिक समय व्यय होता है। इसलिए बालकों को सही समय पर लिखने, पढ़ने, तैरने आदि कौशलों के विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नंबर तीन, अभ्यास का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। कुछ बचपनावस्था की क्रियात्मक कौशलों को छोड़कर शेष कौशलों को सीखने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है, जैसे तैरना, साइकिल चलाना, नृत्य करना, सिलाई कढ़ाई करना आदि। इन क्रियात्मक कौशलों को सीखने के लिए अभ्यास जरूरी है। अभ्यास में क्रिया की पुनरावृत्ति होती है, जिसे बालक धीरे धीरे क्रिया करना सीख जाता है। अभ्यास से ही क्रियात्मक कौशलों में गति, उत्कृष्टता एवं पूर्णता आती है। मगर अभ्यास कराने से पूर्व यह ध्यान दिया जाना जरूरी है कि उन्हें सही उम्र एवं सही समय पर उचित तरीके से अभ्यास कराया जाए। आयु से पूर्व और निर्धारित आयु के पश्चात किसी भी क्रिया का अभ्यास कराना व्यर्थ होता है। उदाहरणार्थ, यदि हम 18 माह के बालक को ट्राईसाइकिल चलाने का चाहें, कितना ही प्रयास कराएं, तो वे बालक ट्राईसाइकिल चलाना नहीं सीख सकेगा, क्योंकि उसके पैरों एवं टांगों की पेशियों में परिपक्वता नहीं आ पाती है। यदि 30 से 36 माह की अवस्था में अभ्यास कराया जाए तो वह शीघ्रता से ट्राईसाइकिल चलाना सीख जाएगा, क्योंकि तब तक उसके पैरों की पेशियों में परिपक्वता आ जाती है। नंबर चार, प्रोत्साहन का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ इनकरेजमेंट। क्रियात्मक कौशलों के विकास में प्रोत्साहन का बड़ा ही योगदान है। छोटे बालकों के लिए प्रोत्साहन प्रेरणा का काम करता है, अतः वह किसी भी क्रिया को जल्दी ही करना सीख लेता है। उसका प्रमुख कारण है कि उसके भीतर व्याप्त डर, भय, संकोच आदि समाप्त हो जाता है। बच्चा बेझिझक कार्यों को पूरे आत्मविश्वास से करना सीखता है, जिससे उसे सफलता मिलती है। इसलिए माता-पिता एवं शिक्षक को चाहिए कि वे बालकों को प्रोत्साहित करें, समय समय पर पुरस्कृत करें, उनकी पसंद की वस्तु उन्हें पुरस्कार स्वरूप दें। हाँ, बालक दूसरे बच्चों की क्रियाकलापों को देखकर भी प्रोत्साहित होता है। नंबर पाँच, आलोचना का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रियात्मक कौशलों के विकास में आलोचना का भी महत्वपूर्ण स्थान है, बशर्ते स्पष्ट ढंग से आलोचना की जाए। जब बच्चा किसी चीज को नहीं सीख पाता और सीखने में बार बार गलती करता है, तो माता पिता एवं शिक्षक को चाहिए कि वे बालक के भूल को सुधार हेतु स्वास्थ्य ढंग से आलोचना करें। आलोचना का अर्थ यह नहीं है कि बालक को खूब डांटा डपटा जाए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा ही कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं बन सकते हो आदि नहीं नहीं नहीं। शब्द सुनते सुनते बालक सोचने लग जाता है कि वास्तव में वह अमुक कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर सकेगा। कार्य करते समय उसके हाथ हिल जाते हैं, फलतः कोई वस्तु उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और बालक घबरा जाता है। अतः बालक के मन में हीन भावना एवं कुंठा भर जाती है। परंतु यदि बालक की आलोचना स्वस्थ तरीके से की जाए एवं उसकी कुंठा नहीं की जाए, तो एक बार गलती हुई तो कोई बात नहीं, दूसरी बार मेहनत करो, सफल हो जाओगे, तो ऐसी बातें सुनकर बालक में क्रियात्मक कौशलों को सीखने की भावना पनपेगी और वह सीख लेगा। पृष्ठ संख्या 88, क्रियात्मक विकास में संकट। बहुधा लोग यह सोचते हैं कि क्रियात्मक विकास का केवल एक ही सीरियस हैजर्ड है, वह है फूहड़पन, अवेयरनेस। मगर यह सच नहीं है। उसके अतिरिक्त भी कई ऐसे हैजर्ड्स हैं जो बालक के क्रियात्मक कौशलों के विकास में बाधा पहुंचाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हैजर्ड निम्नानुसार हैं। नंबर एक, देर से क्रियात्मक विकास, डिले मोटर डेवलपमेंट। देर से क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है बालक में अपने कम आयु के बालक की भांति क्रियात्मक विकास होना, अथवा बालक के उम्र के अनुसार तय किए गए मापदंडों को पूरा नहीं करना। डिले मोटर डेवलपमेंट बिलो द नॉर्म्स फॉर द चाइल्ड्स एज। इसका नतीजा यह है कि बालक को जिस उम्र में विकासात्मक कार्य सीखना होता है उससे वह वंचित रह जाता है। फलता हुआ माता पिता एवं समाज के लोगों की आशाओं के अनुरूप खरे नहीं उतरता है। उदाहरणार्थ, यदि एक बच्चा काफ़ी देर से अर्थात 10 से 12 माह में बैठना सीखता है तो वह खड़ा होना एवं चलना भी देरी से सीखता है। अतः उसके उम्र के अनुसार जो भी विकासात्मक कार्य हैं, जैसे स्वयं भोजन करना, वस्त्र बदलना, बाल संवारना आदि कार्यों में वह भी पीछे रह जाता है। वह पढ़ाई लिखाई में भी पिछड़ जाता है। वह स्कूल में भी काफ़ी देर से पढ़ने जाता है तथा वहाँ भी अपने आप को पीछे पाता है, क्योंकि स्कूल में उसके कम उम्र के बालक उसी कक्षा में पढ़ने आते हैं जिसमें वह पढ़ता है। उसके विद्यालय के साथी उसे बड़ा, दादा या बूढ़ा या भैया कहकर चिढ़ाते हैं। फलतः वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। कुंठा उसके मन के कोने कोने तक समा जाती है। इतना ही नहीं, कई बच्चे तो उसे अपने साथ खेलने से मना कर देते हैं। पृष्ठ संख्या 89, देर से क्रियात्मक विकास के कारण, रीजंस फॉर डिले मोटर डेवलपमेंट। देर से क्रियात्मक विकास के कई कारण होते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिन पर नियंत्रण पाया जाता है, परंतु कुछ कारण अनियंत्रित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि बालक को जन्म से ही मस्तिष्क में कोई रोग है जिसके कारण वह क्रियात्मक विकास को नहीं सीख पाता, अथवा गर्भकाल में या प्रसव के दौरान उसका कोई अंग या हाथ पैर भुजा आदि क्षतिग्रस्त हो जाता है जिसका ठीक होना संभव नहीं है, तो निश्चित ही क्रियात्मक विकास प्रभावित होता है। क्रियात्मक कौशलों के विकास में विलंब के कुछ प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं। रोमन का एक, अभ्यास एवं प्रोत्साहन का अभाव, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड एनकरेजमेंट। क्रियात्मक कौशलों के विकास में देरी का एक बड़ा कारण है अभ्यास एवं प्रोत्साहन का अभाव। यदि बालक को माता पिता व शिक्षक द्वारा सही समय पर प्रोत्साहन नहीं दिया जाता तो वह निश्चित विभिन्न विशिष्ट कौशलों को सीखने से वंचित रह जाता है। प्रोत्साहन प्रेरणा की तरह कार्य करता है। इससे बालकों को कार्य के प्रति रुचि जागृत होती है। प्रोत्साहन एवं अभ्यास से कमजोर एवं दुर्बल बालक भी विभिन्न कौशलों को सीख लेता है जिन पर बालकों का शारीरिक विकास भी सही नहीं है। बुद्धि लब्ध भी ठीक है, परंतु यदि उन्हें बार बार प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, अभ्यास नहीं कराया जाएगा, तब तक वह क्रियात्मक कौशलों को नहीं सीख सकेगा, जैसे तैरना, पेड़ पर चढ़ना, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई करना, साइकिल चलाना आदि। रोमन का 2, घर एवं विद्यालय का भयप्रद वातावरण, फियरफुल एनवायरमेंट ऑफ होम एंड स्कूल। क्रियात्मक कौशलों के विलंब का एक प्रमुख कारण है घर एवं विद्यालय का भयप्रद वातावरण का होना। भय इंसान को खा जाता है, उसके विकास को रोक देता है, यह सत्य है। डर एवं भय के कारण बच्चा कुछ कहने कुछ बोलने में अपने आप को असमर्थ पाता है। उसे हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उसमें कुछ बोला या पूछा तो अभी डांट पड़ेगी अथवा मार खानी पड़ेगी। अतः बालक में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जिसके कारण वह सक्षम होते हुए भी किसी भी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। यदि बालक को किसी कार्य के लिए अधिक डांटा फटकारा जाता है तो वह प्रत्येक कार्य को करने में घबराता है। उसे हमेशा यह महसूस होता है कि अभी गलती हुई नहीं कि डांट पड़ेगी, और इस संवेग के कारण वह किसी भी कार्य को अथवा कौशल का संपादन ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। फलतः इसका क्रियात्मक विकास देर से होता है। रोमन का नंबर 3, शारीरिक विकलांगता, फिजिकल डिसेबिलिटीज। शारीरिक विकलांगता भी क्रियात्मक कौशलों के विकास में अभिशाप सिद्ध होता है। शारीरिक विकलांगता के कारण क्रियात्मक विकास या तो बाधित होता है अथवा काफी विलंब से होता है। लूलापन, लंगड़ापन, बहरापन, अंधापन आदि शारीरिक विकलांगता की स्थिति में बालक का संपूर्ण जीवन ही नरकमय हो जाता है। इसी प्रकार यदि बालक के हाथ पैरों में गंभीर चोट लग जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं, तो इसके कारण भी क्रियात्मक विकास देरी से होता है। रोमन का नंबर 4, बुद्धि की कमी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। अनेक अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि जिन बालकों की बुद्धि कम होती है उनका क्रियात्मक विकास भी काफी देरी से होता है। कम बुद्धि के बालकों को देर से उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना आदि सीखते हैं। वे पढ़ने लिखने संबंधी क्रियाओं को भी विलंब से सीखते हैं। रोमन का नंबर 5, असामान्य शरीर रचना, एबनॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर। असामान्य शरीर रचना वाले बालक भी क्रियात्मक कौशलों को देर से सीखते हैं। इसका प्रमुख कारण उनमें आत्मविश्वास की कमी का होना। असामान्य शारीरिक रचना के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो या तो अधिक मोटे होते हैं या बिल्कुल ही दुबले पतले, मात्र हड्डियों का ढांचा वाले ही होते हैं, अथवा यह कहें कि वह एक नरकंकाल की तरह दिखते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में क्रियात्मक विकास देरी से होता है। अधिक मोटा बालक क्रियाशील नहीं रहता है, उसे खेल के साथी अपने साथ खिलाना पसंद नहीं करते हैं, जिससे वह क्रियात्मक कौशलों को नहीं सीख पाता है। इसी प्रकार अधिक दुबला पतला बच्चा किसी भी काम को करने में जल्दी ही थक जाता है। नंबर 2, कौशलों के संबंध में अवास्तविक आकांक्षाएं। अधिकांश माता पिता अपने बालकों से अधिक अपेक्षा व आशा रखते हैं। इसी तरह कुछ शिक्षक भी कुछ एक बालकों से उनकी क्षमता के विपरीत अच्छे तरीके की आशा रखते हैं, जो सरासर गलत है। हकीकत यह है कि बालकों में उतनी सामर्थ्य, क्षमता एवं कार्य करने की शक्ति नहीं है जितना कि उससे आशा की जाती है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आर एक्सपेक्टेशंस बेस्ड मोर ऑन होप्स एंड डिजायर्स देन ऑन द इंडिविजुअल्स पोटेंशियल्स। जब माता पिता को अपनी आशा अपेक्षा पूरी होते नजर नहीं आती तो वे बालक को भोड़ा, फूहड़, मूर्ख, मंदबुद्धि कहकर डांटते हैं, परंतु ऐसा करना सरासर गलत है। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक 5 वर्ष के बालक की शरीर रचना 7 वर्ष के बालक की तरह है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह बालक भी 7 वर्ष के बालक की भांति व्यवहार करेगा। ऐसी स्थिति में माता पिता बालक के शरीर रचना को ध्यान में रखकर उसकी व्यवहारिक कौशलों से संबंधित मानदंड तय कर लेते हैं, परंतु बालक की मानसिक आयु 7 वर्ष के बालक की तरह नहीं है, अतः वह व्यवहारिक कौशलों में पीछे रह जाता है। अतः माता पिता की अवास्तविक आकांक्षाएं, आशाएं बालक के क्रियात्मक कौशलों के विकास में बाधक सिद्ध होती हैं। माता पिता पहले जन्मे बच्चे से भी अधिक अपेक्षा रखते हैं। इसी प्रकार जो बच्चा समय पूर्व ही अपरिपक्व दशा में पैदा होता है, उससे भी अधिक आशा की जाती है कि वह बालक भी समय से पैदा हुए बालक की तरह ही सही उम्र में सोचना भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न करेगा, जिससे बालक मनोवैज्ञानिक एवं संवेगात्मक रूप से पीड़ित हो जाता है। फलतः वह हीन भावना एवं कुंठा का शिकार हो जाता है। नंबर 3, महत्वपूर्ण क्रियात्मक कौशलों को सीखने में असफल होना, फेल्योर टू लर्न इम्पोर्टेंट मोटर स्किल्स। यदि बालक महत्वपूर्ण क्रियात्मक कौशलों को सीखने में असफल होता है तो उसे नकारा, किसी काम के लायक नहीं घोषित किया जाता है, जिसका दुष्प्रभाव बालक के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। पृष्ठ संख्या 91। उदाहरण के लिए, यदि एक बालक अपने उम्र के मुताबिक अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता है, जैसे वस्त्र बदलना, स्वयं खाना खाना, बाल संवारना, नहाना आदि, तो वह सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। उसे हर एक काम को करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसे अपने ऊपर गुस्सा, क्रोध आता है एवं आखिरकार उसे ये चीजें क्यों नहीं आती हैं, उसने माता पिता से क्यों नहीं सिखाया जाता है, क्यों उसे अब वह परावलंबी बनाया गया है। अतः बालक दूसरों के सामने शर्म एवं लज्जा का अनुभव करता है। परिणामतः बालक कुंठाएं एवं हीन भावना का शिकार हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि दूसरे बालक उससे श्रेष्ठ हैं, दूसरे बालक जो कर सकते हैं वह उसे नहीं कर सकते हैं। अतः वह निराशा, हताशा एवं नकारात्मक विचारों का शिकार हो जाता है। ए बी हरलॉक के शब्दों में, When children want to be accepted members of a peer group, failure to learn to play and social help skills and contribute heavily to social acceptance result in poor social adjustments as well as poor personal adjustment. नंबर 4, बाएं हाथ का होना, left handedness. स्थानीय भाषा में बाएं हाथ से काम करने वाले को चटर हत्था भी कहते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाला लेफ्ट हैंडेड भी हीनता का शिकार होता है, क्योंकि उसके मन में सदैव ही यह बात घूमती रहती है कि वह दूसरे बालकों से अलग थलग है। इस बार बाएं हाथ का होना एक कारण की तरह है। इसके दो मुख्य कारण होता है। नंबर 1, यदि कक्षा में केवल एक ही बालक बाएं हाथ वाला लेफ्ट हैंडर्स है तो वह बच्चा दूसरे बच्चों से अपना आपको अलग थलग समझता है। दूसरे बच्चे अक्सर उसकी नकल करते हैं और मजाक बनाते हैं। यदि बालक कक्षा में शिक्षक उसे पढ़ाते समय उस पर विशेष ध्यान देते हैं और देते समय बाएं हाथ का उपयोग करते हैं तो बाकी बच्चे का ध्यान उस हैंड पर बालक की स्वतः ही चला जाता है। सभी बालकों को अपनी तरफ ताकते देखकर लेफ्ट हैंडेड बालक घबरा जाता है। अतः उसके विचारों, आवृत्तियों, व्यवहार एवं सोच में भी परिवर्तन आ जाता है। फलतः उसका व्यक्तित्व विकास बाधित हो जाता है। बाएं हाथ के बालक को दूसरे बालक बायां हत्था या चटर हत्था कहकर चिढ़ाते हैं। अतः बालक मानसिक तनाव से घिर जाता है। कई शब्दों से उसकी आलोचना की जाती है। वह अकेला ही रहना पसंद करता है। ई बी हरलॉक के शब्दों में, लेफ्ट हैंडनेस हैजर्ड्स ट्रेंड्स टू इंक्रीज एज चाइल्डहुड प्रोसेस एंड एज चाइल्ड बिकम मोर एंड मोर एनक्सियस टू बी लाइक दियर पीयर्स फीलिंग एम्ब्रेज एंड सेल्फ कॉन्सियस अबाउट दियर डिफरेंटनेस यूजुअली रिचेज अ पीक ड्यूरिंग द सेल्फ कॉन्सियस ईयर्स टू प्यूबर्टी एंड अर्ली एडोलेंस। नंबर 2, बाएं हाथ का होना उस समय संकट उत्पन्न कर देता है जब बालकों के सामाजिक समायोजन में कठिनाई आती है, जब बाएं हाथ का बालक अपनी क्षमता से कम सीख पाता है, क्योंकि अधिकांश मशीनें एवं औजार दाएं हाथ के काम करने वालों के लिए बने होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन देते समय प्रशिक्षक औजारों को दाएं हाथ से पकड़ता है और बाएं हाथ से चलाना सिखाता है। तब बाएं हाथ के बालक को मशीनों के संचालन में कठिनाई आती है कि वह किस तरीके से उसे पकड़े और उसका संचालन करे। प्रशिक्षक को भी यह समझ नहीं आता कि उसे औजारों अथवा मशीनों का प्रयोग करना किस तरह से सिखाए। पृष्ठ संख्या 92। अतः बालकों को प्रारंभ से ही इस आदत को छुड़ाने का प्रयास किया जाता है। यदि बाल्यावस्था में इस आदत को नहीं छुड़ाया जाए तो वह अस्थायी हो जाता है और इस कारण बालक में कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक एवं संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। बालक दूसरों को देखकर घबरा जाता है और हकलाने, तुतलाने, नाखून चबाने, अंगूठा चूसने जैसे नकारात्मक व्यवहारों का प्रदर्शन करने लगता है। कभी कभी ये नकारात्मक व्यवहार उसके जीवन के अभिन्न अंग बन जाते हैं। हिल्डरेथ ने सुझाव दिया है कि बालक को बाएं हाथ से दाएं हाथ वाला बनाते समय कम से कम मानसिक दबाव वाला दिया जाना चाहिए, ताकि वह खुशी खुशी दाएं हाथ से काम करना सीख जाए। इसलिए निम्नांकित शर्तों का होना आवश्यक है। नंबर एक, बालक की उम्र 6 वर्ष से कम हो। नंबर दो, बालक दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है। नंबर तीन, बालक दाएं हाथ से काम करना सीखने के लिए तत्पर है। नंबर चार, बालक की बुद्धि सामान्य से अधिक है। नंबर पाँच, बालक दाएं हाथ से सीखने में अधिक परेशानी नहीं है। नंबर पाँच, फूहड़पन आवेग वार्डनिश। यदि बालक किसी भी कारण अपनी उम्र के अनुसार तय किए गए मानदंडों को पूरा नहीं करता तो उसे भौंड़ा या फूहड़ कहा जाता है। वे सभी बालक इन्हें फूहड़पन की श्रेणी में रखा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि वे वास्तव में फूहड़ हों। कई बार माता पिता एवं अभिभावक बालक के शरीर रचना एवं आकृति को देखकर उसका मानदंड तय कर देते हैं। जैसे 6 वर्ष के बालक की शारीरिक रचना उसकी आकृति यदि 7 से 8 वर्ष के बालक की तरह है तो माता पिता एवं शिक्षक भी उस बालक से अधिक आशा करते हैं और उसी के मुताबिक मानदंड तय करते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि कौशलों का विकास का संबंध मानसिक आयु से है। हिलगार्ड ने इस प्रकार की त्रुटि को आकार एवं उम्र की संज्ञा दी है। ई बी हरलॉक ने फूहड़पन को परिभाषित करते हुए लिखा है, चिल्ड्रन शुड बी रिगार्डेड एज अवेक्वर्ड आर क्लूम्सी ओनली इफ कंट्रोल ओवर द मूवमेंट्स ऑफ दियर बॉडीज फॉल्स बिलो द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर दियर एज। सम चिल्ड्रन मे सीम टू अवेक्वर्ड Because they are judged by standards। अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि बालकों में फूहड़पन अथवा लापरवाही के कई कारक जिम्मेदार होते हैं। कुछ कारक अनियंत्रित होते हैं, कुछ नियंत्रित। अनियंत्रित कारकों पर मानव का कोई बस अधिकार नहीं होता है। नियंत्रित कारकों में अग्रलिखित कारक प्रमुख हैं। पृष्ठ संख्या 93। नंबर एक, शारीरिक अंगों में परिपक्वता में देरी। नंबर दो, निम्न शारीरिक बनावट। नंबर तीन, शारीरिक स्थिति। नंबर चार, अत्यंत कम बुद्धि लब्धि। नंबर पाँच, मांसपेशीय नियंत्रण के अवसर उपलब्ध न होना। नंबर छः, संवेगात्मक तनाव। नंबर सात, निपुणता की अपेक्षा। वे बच्चे जो अधिक तनावग्रस्त रहते हैं उनमें फूहड़पन की समस्या अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि संवेगात्मक तनाव के कारण उनकी मांसपेशियाँ अधिक खिंच जाती हैं तथा कठोर एवं सख्त हो जाती हैं। अतः उस पर बालक का नियंत्रण बड़ी ही कठिनाई से हो जाता है। सामान्यतः 6 समंजन वाले बालक भी ऐसी स्थिति में भद्दा एवं फूहड़ दिखने लगता है। जब बालकों की स्थिति वृद्धि एवं विकास काफी तीव्र गति से होता है, विशेषकर वयः संधि अवस्था में पुबर्टी ग्रोथ स्पर्ट, जब बालक किशोर होने लगता है तो उसमें फूहड़पन पाया जाता है। वे बच्चे जिनकी शारीरिक वृद्धि जितनी ही तीव्र गति से होती है उनमें फूहड़पन की समस्या उतना ही अधिक होती है, क्योंकि बढ़ते हाथों पैरों के साथ बालक शीघ्रता से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। बालकों में फूहड़पन के कारण मनोवैज्ञानिक हानि, साइकोलॉजिकल डैमेज इन चिल्ड्रन ड्यू टू अवेक्वर्डनेस। फूहड़पन के कारण बालकों में अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक हानि होती है। कुछ प्रमुख हानि निम्नानुसार है। नंबर एक, हीन भावना एवं कुंठा का शिकार होना। नंबर दो, दूसरे बालकों में ईर्ष्या रखना। नंबर तीन, वयस्कों की बात न मानना व उसकी अवज्ञा करना। नंबर चार, आश्रितता। नंबर पाँच, बोर होना एवं बेचैन रहना। नंबर छः, कायरता अथवा डरपोकपन। नंबर सात, सामाजिक उपेक्षा।